ये आकाशवाणी है। अब आप रत्ना पांडे से समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि कपड़ा क्षेत्र में भारत का निर्यात वर्तमान में 3 लाख करोड़ रुपए है और 2030 तक इसे 9 लाख करोड़ रुपए तक पहुंचाने का लक्ष्य है। नई दिल्ली के भारत मंडपम में आज भारत टेक्स 2025 में उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि देश के कपड़ा और परिधान निर्यात में पिछले साल 7% की वृद्धि दर्ज की गई। उन्होंने बताया कि भारत आज 6ठा सबसे बड़ा कपड़ा और परिधान निर्यातक देश है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि भारत की सांस्कृतिक विविधता देश के विभिन्न भागों में बनने वाले वस्त्रों में झलकती है। श्री मोदी ने कहा कि फार्म फाइबर फैब्रिक फैशन और फॉरेन का विजन एक मिशन बन गया है और ये भारत के विकास के विभिन्न क्षेत्रों का विस्तार कर रहा है। श्री मोदी ने कहा कि पहले भारतीय अन्य देशों द्वारा सुझाए गए कपड़े पहनते थे, लेकिन अब भारत दुनिया को बताएगा कि क्या पहनना है। उन्होंने ये भी कहा कि हथकरघा कारीगरों का हुनर दुनिया तक पहुंचना चाहिए और उनकी क्षमताएं और अवसर भी बढ़ने चाहिए। प्रधानमंत्री ने प्रदर्शनी स्थल का भी दौरा किया और प्रदर्शकों से बातचीत की। ये कार्यक्रम कच्चे माल से लेकर तैयार उत्पादों और सहायक उपकरणों सहित संपूर्ण कपड़ा मूल्य श्रृंखला को एक छत के नीचे लाता है। भारत टेक्स प्लेटफॉर्म कपड़ा उद्योग का सबसे बड़ा और सबसे व्यापक कार्यक्रम है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज नई दिल्ली में आदि महोत्सव का उद्घाटन करते हुए कहा कि पिछले 10 वर्षों के दौरान आदिवासी लोगों के समग्र विकास के लिए कई प्रभावी कदम उठाए गए हैं। राष्ट्रपति ने कहा कि जनजातीय समुदाय की परंपराएं और जीवन शैली देश की संस्कृति को समृद्ध करती है। उन्होंने कहा कि आदिवासी समाज का उत्थान होगा तभी देश विकसित होगा। उन्होंने कहा कि आदिवासी समाज को तेजी से विकसित करने के लिए अनेक प्रयास किए जा रहे हैं। राष्ट्रपति ने कहा कि जनजातीय समाज की शिल्प कला, भोजन, वेशभूषा और आभूषण, चिकित्सा पद्धतियां, घरेलू सामान और खेल देश की अनमोल विरासत हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा आयोजित ये महोत्सव राजधानी के मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में 24 फरवरी तक चलेगा। भारतीय रेलवे ने कल रात नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हुई दुर्घटना में मारे गए 18 लोगों के परिजनों को 10-10 लाख रुपए की अनुग्रह राशि दी है। भारतीय रेलवे ने एक वक्तव्य में कहा है कि गंभीर रूप से घायल 3 यात्रियों को 2.5-2.5 लाख रुपए दिए गए हैं। अब तक कुल 195 लाख रुपए से अधिक की अनुग्रह राशि दी जा चुकी है। कुल 15 घायल यात्रियों में से 11 यात्रियों को उचित चिकित्सा उपचार के बाद अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है और 4 यात्री अभी भी अस्पताल में भर्ती हैं। उत्तर रेलवे ने यात्रियों की सुविधा के लिए और महाकुंभ मेले के दौरान अतिरिक्त भीड़ को कम करने के लिए आज नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से प्रयागराज जंक्शन तक 4 नई महाकुंभ मेला विशेष रेलगाड़ियां शुरू की हैं। उत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी हिमांशु शेखर उपाध्याय ने बताया कि 4 ट्रेनों में से 1 आनंद विहार रेलवे स्टेशन से और बाकी नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से चलाई जा रही हैं। उन्होंने कहा कि इन रेलगाड़ियों के प्रस्थान का समय प्रतिदिन दोपहर 3 बजे से रात्रि 9 बजे के बीच निर्धारित किया गया है। उन्होंने बताया कि कल 5 विशेष रेलगाड़ियां और चलाई जाएंगी। असम विधानसभा का बजट सत्र पहली बार गुवाहाटी से बाहर कोकराझाड़ में कल से शुरू हो रहा है। मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व सरमा के अनुसार ये प्रयास राज्य में शांति बहाली और लोगों की एकजुटता का प्रतीक है। उन्होंने बताया कि बजट सत्र की शुरुआत राज्यपाल के अभिभाषण से होगी। बजट सत्र की शेष कार्यवाही गुवाहाटी विधानसभा में ही होगी। ये सत्र 25 मार्च तक चलेगा। पूर्वी माली में अवैध रूप से संचालित सोने की खदान के ढह जाने से 48 लोगों की मौत हो गई और कई अन्य घायल हो गए। स्थानीय अधिकारियों के अनुसार माली की खदानों में अक्सर घातक दुर्घटनाएं होती रहती हैं। वहां खनिक बिना अनुमति के कीमती धातु की खोज करते हैं। शनिवार को हुई दुर्घटना एक बंद पड़ी खदान में हुई, जिसका संचालन पहले चीन की एक कंपनी करती थी। भुवनेश्वर में FIH प्रो हॉकी लीग प्रतियोगिता में भारतीय पुरुष टीम ने स्पेन को 2-0 से हरा दिया है। मनप्रीत सिंह और दिलप्रीत सिंह ने 1-1 गोल किया। इससे पहले इंग्लैंड ने बेहद करीबी मुकाबले में भारतीय महिला टीम को पेनल्टी शूटआउट में 2-1 से हराया। भारतीय महिला टीम का अगला मुकाबला स्पेन से 18 फरवरी को होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।